السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، ان کی زندگی اور ہم آج کا مسلمان. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ قرآن میں اتنی دفعہ ہے، جیسے سورۃ النساء، سورۃ مائدہ، سورۃ نور، سورۃ محمد اور سورۃ تغابن، کئی صورتوں میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اطاعت جو ہے اس کے معنی ہیں کہ کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کا کہنا ماننا اور کسی کو فالو کرنا، کسی کی پیروی کرنا. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سورت حشر کی آیت 7 بہت اہم ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. جیسے آج کا مسلمان جو ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی رسول اور بلوڈ پروفٹ کا نام آئے تو کیا کہنا ہے سب کو، سب بولے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ عملی زندگی میں، ان اور پریکٹیکل لائف، اطاعت کتنی ہے، ہم کتنا جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے ایک اور اہم آیت ہمیں پتہ چلتی ہے، وَعَطِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بلیسنگ ملے، ہمیں اللہ کی رحمت ملے. تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی کے خوشیاں ہوں یا غم ہوں، بچوں کی پیدائش ہو یا کسی کو جاب مل جائے یا جاب میں ترقی ہو جائے، یا یہ کہ کہیں کسی بچے کی بچہ جو ہے بیٹے کی خواہش تھی تو بیٹا مل گیا، یا وٹ ایور، کچھ بھی اچھی خوشی ہو سکتی ہے، تو اس موقع پہ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہم سوچ سکتے، یہ نہیں ہم دیکھ سکتے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، دوست یہ کہتے ہیں، بلکہ مجھے اور آپ کو ہر صورت میں جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، ان کے بتائے ہوئے انداز، ان کے بتائے ہوئے اصول، ان کی بتائی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتیں جو ہیں اس کے اوپر چلنا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، ان کی ایک کہانی میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، اور اس کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ راستے میں جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک دوست تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ساتھی سے کہا کہ 3 روٹیاں لے لیتے ہیں، 3 بریڈ. اور جب وہ 3 روٹیاں لے کے دیور ٹریولنگ اور وہ جا رہے تھے، تو وہ جو ساتھی تھا نا، ساتھ والا، اس نے نا چپکے سے، چوری سے نا، 1 روٹی کھا لی بیچ میں سے. اب 2 روٹیاں رہ گئیں. اب راستے میں جب کہیں وہ ٹھہرے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کھانا کھولتے ہیں. جب کھانا کھولا تو اس میں 1 روٹی تھی، 2 روٹیاں تھیں. پوچھا کہ 1 روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اس نے قسمیں کھانی شروع کر دی، اوت، اور کہنے لگا کہ مجھے بالکل نہیں پتا، اور بلکہ کہنے لگا روٹیاں تھیں ہی 2، آپ کو غلطی لگ رہی ہوگی، مجھے 3rd کا تو پتہ ہی نہیں، اور تھیں ہی 2 روٹیاں. تو عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، پھر اور آگے چلے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے نا، وہ سمندر تھا اور اس کو خشک کر دیا کسی وجہ سے، مطلب جیسے کوئی چیز پھینکی اور اللہ سے دعا مانگی، سمندر خشک ہو گیا. اللہ رب العزت نے ان کو بہت سے میریکل دیے تھے. اور پھر اس آدمی سے کہنے لگے کہ وہ رب جس نے اس سمندر کو ڈرائی کر دیا، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کی میں قسم کھا کے تم سے کہتا ہوں، بتا دو وہ روٹی 3 کس نے کھائی تھی. اس نے کہا مطلب تھی 2 روٹیاں نا. پھر تھوڑی دیر اور آگے گئے تو وہاں پہ نا 3 سونے کی بوریاں عیسیٰ علیہ السلام کو ملی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 تو تمہاری بوری، 1 میری، اور 3 وہ جس نے تیسری روٹی کھا لی. اب وہ تیزی سے بولا کہ وہ میں نے کھائی تھی. کیوں؟ اس کو सैक ऑफ गोल्ड चाहिए था, यानी दुनिया से जो है वो मोहब्बत करता था। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि दुनिया की ज़िंदगी कितनी ही तवील क्यों ना हो, कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसका एक एंड है। कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, فبأي آلاء ربكما تكذبان। जो कुछ भी ज़मीन पर है फना हो जाने वाला है, और सिर्फ तेरे रब्बे अजीज़ की, तेरे रब्बे जलील की जो ज़ात है वो बाकी रहेगी। وجاءت سكرة الموت بالحق, وجاءت سكرة الموت بالحق, ذلك ما كنت منه تحيد। तो मौत की जो जांकुनी है, जो सख्त, यानी मौत जो है इंसान के पास आ जाती है, और वही यही वो चीज़ है जिससे इंसान जो है वो भागता है, इंसान फरार करता है, दौड़ता है, और फिर वो कहता है कि मतलब मरना नहीं चाहता। कोई भी 70, 80, 90, 100 साल का भी हो जाए, कितना ही बूढ़ा हो जाए, और इंसान मरना नहीं चाहता, कितना ही बीमार क्यों ना हो। और इसी तरह हम दुनिया से इतनी मोहब्बत करते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते, किसी के हकूक़ की फ़िक्र नहीं करते, दूसरों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, और दूसरों के हकूक़ को छीनते हैं, और विरासत का वताकुलूना तुरासा अक्लल लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। सूरत अल फजर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम माल से इतनी मोहब्बत करते हो कि दूसरों की मिरास का माल जो है ना वो हड़प कर जाते हो, खा जाते हो। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी और आपकी ज़िंदगी जो मिली मुझे और आपको, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको ये दुनिया में क्यों भेजा? सूरत मुल्क में फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमा कर देखूं कि तुम में से बेस्ट अमल करने वाला कौन है, बेस्ट डीड। अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया अय्युकुम अक्सरु अमला, ये नहीं कहा। क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। और क्वालिटी क्या है? हर वो अमल जो अल्लाह के बताए हुए उसूल के मुताबिक हो, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हो। तो आइए, मेरी और आपकी जो ज़िंदगी है, मेरे और आपके जो ज़िंदगी के लम्हात हैं, आइए उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में जो है वो खपा दें। मैं आपसे पूछती हूँ कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, जैसे एक कार है, एक हाउस है, एक गोल्ड का सेट है, आईफोन है, आईफोन 5 है, आईफोन 6 है, 6S है। तो जो जो चीज़ें बढ़ती जाती हैं उनकी कीमत, उनकी प्राइस भी बढ़ती चली जाती है। तो जन्नत, जन्नत जो सबसे खूबसूरत है, जो सबसे कीमती है, उइद्दत लिलमुत्तकीन, अल्लाह ने मुत्तकीन के लिए जन्नत को तैयार किया है। इन्ना लिलमुत्तकीन मफाज़ा हदाइक़ा वअनाबा, तो वो जन्नत जो अल्लाह ने मुत्तकीन के लिए तैयार की है, तो आप क्या समझती हैं उसकी कोई कीमत नहीं होगी? उसकी वो प्राइसलेस है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसके लिए कोई कुर्बानियाँ नहीं हमें करनी होंगी, उसके लिए हमें कुछ हार्ड वर्क नहीं करना होगा, यूं ही बैठे बैठे मिल जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। पोले पोले पैरी इस्लाम नहीं हो आवना, रब की रज़ा हासिल करने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए मुझे और आपको अपने आप को बदलना होगा। ये कह के कासा साज ने प्याला पटक दिया, ये कह के कासा साज ने प्याला पटक दिया, अब और कुछ बनाएंगे इसको बिगाड़ के। तू बचा बचा के ना रख इसे, तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। मेरी प्यारी बहनों, हम में से कुछ लोग जो है, कुछ 30 के, कुछ 40, 50, कुछ 70, 80 से भी अब ऊपर हम जा रहे हैं, तो आइए मैं और आप अपना मुहासबा करें। अल्लाह ने क्यों भेजा था, क्या होमवर्क दिया था, किस मकसद के लिए भेजा था, और मैं और आप क्या कर रहे हैं, किन कामों में मसरूफ़ है? मेरी और आपकी ज़िंदगी जो है गिले, शिकवे, कंप्लेंट्स, विशेस, बस इसके इर्द गिर्द जो है वो घूमती रहती है। दिल है कि मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। इकबाल बड़ा उपदेशिक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। हम दूर नहीं जाते, हम में से हर शख्स अपना अपना मुहासबा करेगा। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह उन्होंने फ़रमाया, हासबो कबलान तो हासबो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन इस्तवा यौमानी फ़ाहुआ मकबूनुन, कि जिसके दो दिन सेम हो गए उसका गबन हो गया, उसका दिवालिया हो गया। तो हम ये तो कहते हैं ना कि वो बैंकरप्सी हो गया, यानी उनका वो जो घर था वो अब ख़त्म हो गया, और वो ऐसे हो गया वैसे हो गया, और एक्सीडेंट हुआ था, चलो एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी जो थी ना वो भी सारी जो थी ना वो साथ ही ख़त्म हो गई। लेकिन कभी मैं और आप ये सोचते हैं कि इतनी जवानी, इतना हुसन, इतना कद, इतनी कुव्वतें, इतनी सलाहियतें, इतनी दौलत, ये सब कुछ मेरे और आपके रब ने मुझे और आपको अता की थी, तो काबा किस मुंह से जाओगे, गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती। मैं और आप तो अल्लाह के करीब जा रहे हैं, अल्लाह के पास जाने वाले हैं। हर लम्हा हमें मौत के करीब कर रहा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनको जो है वो उम्र सानी कहा जाता है, एक दफ़ा कहने लगे कि मुझे जो है वो रात भर नींद नहीं आई। उनसे किसी ने पूछा कि क्या वजह थी कि आपको नींद नहीं आई। कहने लगे कि मैं जो है वो कब्र और अहले कब्र के बारे में सोचता रहा। और फिर कहने लगे कि अगर मुर्दे को 3 दिन के बाद तुम कब्र में देखो तो तुम उसको पहचान नहीं सकोगे, तुम उसको पहचान नहीं सकोगे। और कब्र क्या है? जन्नत के बागों में से या तो बाग बन जाता है, या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाता है। हज़रत उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हो, वो कहा करते थे, कहते थे कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, और अगर कोई इससे खैरियत से गुजर गया ना तो उम्मीद है कि अगली मरहले भी आसानी से गुजर जाएंगे। और कब्रिस्तान में जब जाते, कब्र को जब याद करते तो बहुत रोते थे। और मेरी प्यारी बहनों, ये वो कौन थे जिनको दुनिया में जन्नत की बिशारत मिली थी? और हम अशरा मुबशरा या और बहुत से सहाबा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी थी। और मौजूदा दुनिया के हाल, फिलिस्तीन को देखें कि कश्मीर को देखें, अफ़गानिस्तान को देखें, इंडिया में अभी जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान को देख लें, ये जलजले हैं। आज मुसलमानों की दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? आज मुसलमानों की सबसे ज़्यादा जो हैं वो मुसलमानों का वज़न, उनकी कदर व कीमत क्यों कम हो गई? इसकी असल वजह जो है वो ये है कि हमने कुरान मजीद को छोड़ दिया। आखरत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, और जो है वो उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहेंगे कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्ना कौमित तखुज़ु हाज़ल कुराना हुजूरा, कि इस कुरान को मेरी कौम ने छोड़ दिया था। और हिजर जो है एक दूरी, जुदाई के लिए आता है, एक हुजर भी होता है, उसके मानी होते हैं मजाक उड़ाना। ये भी मजाक है कि कुरान कुछ कहे और मैं और आप जो है ना वो कुछ करें। और इसके साथ ही एक और अहम बात जो इस वक्त मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे अब फिर रबीउल अव्वल का महीना आया ही जाता है, और हम लोग जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, और हमने कभी गौर किया कि आपकी ज़िंदगी का मिशन क्या था, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या था? ये सब सुन्नतें हैं कि किसी को सलाम करें। जैसे माशाल्लाह यहाँ पे एक नेबरहुड है, एक सिस्टरहुड का तसव्वुर है यहाँ पे, लेकिन क्या मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम आपस में अपने हमसायों का, पड़ोसियों का, जार जो हैं, करीबी जो हैं या दूर वाले हैं, हम उनका ना ख्याल रखें, बूढ़ों का ख्याल रखें, बच्चों वालों का ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। यानी मेरी और आपकी सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। और पहला मुकदमा जो हशर के मैदान में पेश किया जाएगा वो एक पड़ोसी होगा जो दूसरे पड़ोसी के बारे में शिकायत करेगा, कंप्लेन करेगा कि इसने मेरा हक अदा नहीं किया था या मेरा ख्याल नहीं किया था। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना गार्बेज बाहर निकाल कर रख दें और पड़ोसी के बच्चे छिलके देकर आम खाए हैं हमने, और फ्रूट कोई भी, यहाँ पे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हालात नहीं होते, हर एक कोई फ्रूट और खाने पीने की चीज़ें मैसर हैं, लेकिन कभी ऐसे भी होता है कि हम खा रहे होते हैं और पड़ोस में खुशबू जा रही होती है, गुड स्मेल। आज मैं अभी आ रही थी, बहुत दूर तक गुड स्मेल आ रही थी खाने की, क्योंकि हम कुकिंग करते हैं, अच्छी स्मेल आती है। लेकिन हम हमेशा ऑलवेज वी आर थिंकिंग कि कोई बिरयानी बनाएंगे तो कोई स्पेशल डिश बनाएंगे, देन वी विल सेंड टू अवर नेबर। बट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम खाना पकाओ तो खा यानी बकरी का, जो बकरी का खुरी क्यों ना हो, शात यानी उसका उसका उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा कर लो और वो खुरी क्यों ना हो वो पकाओ। लेकिन कभी आप सोचें, मैं भी अपना मुहासबा करती हूँ अक्सर, कहती हूँ आज तो बस दाल ही है, ये तो उबले चावल ही हैं, जस्ट बॉयल राइस, जस्ट दाल, तो ये कैसे किसी के घर भेज दूँ ना कोई अच्छी, और वो अच्छी, अच्छा तो अच्छा मैं भेजूंगी, अच्छा ये मेरे कल काम आएगा। वो मुबारकबाद देनी चाहिए डीप फ्रीज़र को और फ्रीज़र को और फ्रिजेस को। जब फ्रिजेस और डीप फ्रीज़र नहीं थे तो भी मेरा ख्याल है हम सायों के हकूक ज़्यादा अच्छे अदा करते थे। अब जो है वो डीप फ्रीज़र फ्रिजेस, ये फिर 2 माह बाद काम आएंगे, ये 1 माह बाद वो वीकेंड पे मेहमान आ जाएंगे तो उसमें, और फिर मैंने, मुझे लगता है कल मेहमान आए तो बेटा भी मेरा यूनिवर्सिटी से आया हुआ था तो उसके जाने के लिए खाना भी पका रही थी, अचानक मेहमान आए तो उनको खाना वगैरह दिया, चाय दी, तो मैंने बस उसे इतना कहा कि तुम जाके ना सलाम करो, तो कहने लगा आपको पता है मैं जाने वाला हूँ, नहा नहा के आया था और बहुत कोई होमवर्क भी कर रहा था, कुछ सबमिट भी करना था। तो मैंने कहा देखो मेहमान घर आते हैं ना तो ये जो है ये अल्लाह की रहमत आती है, अल्लाह की ब्लेसिंग आती है, तो उसकी उससे रिस्पेक्ट करना और उनकी इज्जत करना, जो कुछ मुयस्सर हो, कुछ भी हो, मोहब्बत से, शौक से, प्यार से उनके सामने पेश करना, तो इसका कितना अजर है, बहरहाल अल्लाह उसको बहुत जजाए खैर दे। वो कह रहा है मामा मुझे ये सब बातें पता है, लेकिन मैंने कहा देखो अल्लाह के बाद अल्लाह अल्लाह और अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ भी दिया है, मुझे लगता है कि यानी हमने अपने वालदैन से यही सीखा था कि मेहमान आए तो इज्जत करना, उनको सलाम करना, उनके पास बैठना, उनके पास पूछना। लेकिन अब हमारे बच्चे कहाँ इतना निकलते हैं मेहमान, अम्मी की आंटी हैं ये तो अम्मी की फ्रेंड है, अंकल हैं ये तो अब्बू के फ्रेंड हैं, और बच्चे जो हैं वो कमरों के अंदर ही। और दूसरा ये कि ये जो है सोशल मीडिया जिसमें ये व्हाट्सएप है और इसके अलावा फेसबुक है या मैसेंजर है और यानी एक दुनिया है ट्विटर जो कुछ भी, तो अब उस हम आपस में करीब 2-4 लोग बैठे होते हैं ना, हर शख्स अब इसके ऊपर लगा होता है, टिक 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 टिक, और दूसरे की खबर नहीं होती। तो हमारी सबकी ये जिम्मेदारी बनती है हम अपने अंदर के इंसान को बदलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आजी इनकसारी बहुत पसंद है, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगुं होकर भरा करती है पैमाने। अमारत, गुरबत और ज़ातों का अच्छा होना या किसी भी लिहाज से कोई भी किसी भी ओहदे पर कोई शख्स नहीं है जब तक कि उसका इखलाक अच्छा नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे तो एक अंसारी सहाबी आए और वाटर ऑफ ड्रॉप्स जो थे ना उनके इस चेहरे से जो थे गिर रहे थे, वो वुदू किए हुए थे, हाथ में उनके शूज़ पकड़े हुए थे, मस्जिद नबवी में आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स जन्नती है, अभी अभी जो शख्स आएगा ना वो जन्नती है। तो वो एक सहाबी थे। फिर दूसरा दिन हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा अभी अभी जो आने वाले हैं ना वो जन्नती हैं, अभी जो मस्जिद में दाखिल होंगे। सेम सहाबी अगेन केम, और थर्ड डे अगेन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उन्होंने कहा कि अभी जो आने वाले हैं ना वो जन्नती हैं। तो सेम सहाबी आए और सहाबा बड़े हैरान थे, बहुत हैरान थे कि ये मतलब इनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नती हैं। और फिर जो है अब सब ये जानना चाहते थे कि क्यों अल्लाह के नबी ने कहा, सहाबा को बहुत शौक था जन्नत में जाने का, सहाबा को बहुत शौक था, दीवानगी थी। और आप देखें कि इसका कपड़े का डिज़ाइन अच्छा है तो मैं क्या, मुझे बहुत शौक है ये, अच्छा कहाँ से लिया, किसने कढ़ाई की, कितने का मिला, अच्छा आपको ये ग्रोसरी कितनी सेल कहाँ से है, यानी कहीं सेल की खबर मिल जाए, किसी डिज़ाइन अच्छे की मिल जाए, कोई कपड़ा अच्छा नज़र आ जाए, कोई सोफे का डिज़ाइन पसंद आ जाए। और ज्वेलरी पे तो हम वैसे ही जान देते हैं, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर, यानी दुनिया की कोई भी चीज़ होती है नकद दिल हार देते हैं। अब सहाबा तड़पने लगे, बेचैन हो गए, रोने लगे और अपने ऊपर अफसोस करने लगे और उन सहाबी पे रश करने लगे कि अल्लाह के नबी ने कंटिन्यूसली फॉर 3 डेज व्हाई ही सेड दैट नाउ ही हु विल कम ही इज जन्नती, व्हाई, और इसके लिए अब आपस में ना बेचैनी। और फिर एक सहाबी ने ना कुछ बहाना किया और कहा कि मैं ना आपके पास कुछ रहना चाहता हूँ। और उनके घर गए और रातों को भी उठ उठ के देख रहे हैं कि ये नफल कौन से पढ़ रहे हैं, कि ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे, कौन सी सूरतों की तिलावत कर रहे हैं, कोई कोई सदका खैरात, कोई नफल, कोई चीज़ जो ये छुप कर अलग से करते हैं। तो उसके बाद उसे कहने लगे कि ए फलां, कहा कि ए, कहते हैं कि कहा कि ए, और जो गए थे वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस थे। तो कहा कि मुझे कोई ऐसा मसला नहीं था, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 डेज़ कंटिन्यूसली ये कहा था कि आप जन्नती हैं, और मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की खुशखबरी दी। और वो सहाबी जो थे और कहा, अच्छा उन्होंने ये भी कहा कि ना मैंने तुम्हें कोई ये देखा है कि तुम हमसे रोज़े ज़्यादा रख रहे हो, ना ये देखा है कि तुम नफल ज़्यादा पढ़ रहे हो, ना कोई जिक्र अज़कार तस्बीह वगैरह ऐसी भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा नज़र नहीं आ रही, तुम्हारा कौन सा अमल ऐसा है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। तो उस वक्त जो है वो उन सहाबी ने, अंसारी सहाबी थे, जिससे ही मुस्लिम की रवायत है, तो उन सहाबी ने कहा कि मेरा कोई ऐसा तुमने देख ही लिया मेरा दिन भी और मेरा मेरी रात भी, मेरा कोई ऐसा अमल ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे दिल में किसी दूसरे शख्स के लिए कोई कीना और कुदूरत नहीं है। गिल, गिल का लफ्ज़ आता है ना कुरान में, क्योंकि गिल जो है वो दिलों को पकड़ लेता है, कैच करता है, फिर आप मुस्कुरा कर मिल नहीं सकते, आप सलाम नहीं करते, कीना कदूरत। तो उन्होंने कहा मेरे दिल में किसी दूसरे के लिए हसद नहीं है, कीना नहीं है, नफरत नहीं है, कदूरत नहीं है, कोई गिल नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सोचें कि अब तो सगी बहन से कीना कदूरत रखती है, सगा भाई बहन से जो है वो हसद करता है, और आपस में, रिश्तों में, बच्चों की पढ़ाइयों में, कपड़ों के बनाने में, और किसी के, यानी एक बहन के, सगी बहन के बच्चे ज़्यादा अच्छे पढ़ रहे थे, उसके नंबर ज़्यादा अच्छे आ रहे थे, दूसरी बहन जो थी ना उससे हसद कर रही थी। एक बहन के बच्चों के रिश्ते अच्छे हो गए, दूसरी बहन उससे जो थी ना वो हसद कर रही थी, दोनों से मेरी दोस्ती थी। और मैं उस वक्त सोच रही थी कि इसीलिए जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हसद जो है ना बताया कि हसद नेकियों को खा जाता है। तो अब जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, कोई शख्स, अब जैसे ये बड़ा सा गिफ्ट का ये पैकिंग है, तो मैं सोचती हूँ पता नहीं ये किसके घर जा रही है इतना बड़ा गिफ्ट का पैक लेके, क्योंकि हम सब इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं ना, तो लोगों के घर लोग आते जाते रहते हैं, तो हम ना नज़र रखते हैं इनके घर कौन गया, इनके घर कौन आया, अच्छा ये बहुत बड़े बहुत गिफ्ट आ रहे हैं इनके घर, अच्छा मुझे तो दावत ही नहीं दी, अच्छा तो इसके बेटे की मंगनी थी, अच्छा तो इसके बेटे का ये फंक्शन था, अच्छा, देखो इतनी तौफीक नहीं हुई, थोड़ी सी मिठाई भेज देती मुझको, इतनी तौफीक नहीं हुई, मुझे भी दावत पे बुला लेती, चलो। और बड़ा दिल ख़राब करके बैठ जाते हैं कि उसने मुझे मिली थी सलाम नहीं किया, मुझे गिफ्ट नहीं दिया, मुझे दावत पे नहीं बुलाया, मैं तो मेरे मतलब मुझे उसने कुछ समझा ही नहीं, अपने आप को हम बहुत कुछ समझ कर जो है वो बैठे हुए होते हैं इसमें, ऐसी हर एक के हालात होते हैं, हर एक के मसाइल होते हैं, हर एक की कुछ मजबूरियां होती हैं, जब आप उस जगह पे पहुंचते हैं ना बाजू का बहुत देर लग जाती है बात को समझते हुए। तो दूसरों से शिकवे ना किया करें, दूसरों से जो है वो हसद ना किया करें। मैं आपको नहीं कह रही, दरअसल मैं अपने आप को ये सबक देती रहती हूँ, हर वक्त बताती रहती हूँ, तो जो मैं अपनी बातें हैं वो आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ कि मेरी और आपकी, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अल्लाह पर सच्चा ईमान लाएं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, फुट प्रिंट्स जो है ना उनके ऊपर हम चलना शुरू करें, उनकी सोचें, उनकी बातें और उनका अमल। और उनका सबसे बड़ा अमल ये था, जो सबसे बड़ी सुन्नत थी, ह्यूज सुन्नत, बिग सुन्नत, जिसकी वजह से मोहसिन इंसानियत के लाए कहलाए, वो ये था कि इंसान हदायत पा जाए। तो मेरी प्यारी बहनों, हम फिरोज़ा जो है नए घर में शिफ्ट हुई है इस वक्त, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका इस घर में जो शिफ्ट होना है इसको मुबारक कर दे, इसके बच्चों के लिए, इसके शोहर के लिए, रिज़्क़ के लिए, सेहत के लिए, ईमान के बढ़ने के लिए। और मैं आपको चंद एक अशार के बाद जो है ये दुआ करती हूँ, इन अशार में बड़ा ही अच्छा मैसेज है और ये मैं आपको भी और अपने आप को देना चाहती हूँ। ज़िंदगी इसकी अनायत है, संभालो इसको, अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको, ये ना नफ़रत के लिए है ना अदावत के लिए, ये ना रंज के लिए है ना बगावत के लिए, ज़िंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए। क्योंकि हम सब यहाँ पे बहुत करीब करीब रहते हैं, बेशक कोई अरबी है, कोई अजमी है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है, कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई इंडिया का है, वॉट एवर किसी भी कंट्री से है, बेस्ट चीज क्या है कि हम मुस्लिम हैं, हम एक हैं। ये ना रंज के लिए है ना बगावत के लिए, जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिल रुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल कर मत उसे दुश्वार करो, खूबसूरत है वो, खूब उसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसे, ये तो जन्नत है, जहन्नुम ना बनाओ इसे। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बीवी शोहर की खुशी में गुजरे। जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे, जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी वो है जो कुरान से मंसूब रहे, जिंदगी वो है जो कुरान से मंसूब रहे, जिंदगी वो है जो अल्लाह को महबूब रहे, जिंदगी वो है जो अल्लाह को महबूब रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। सांस जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, वालदैन की बाहों में रहो। आज नफ़रत के चिरागों को बुझा कर रख दो, आज नफ़रत के चिरागों को बुझा कर रख दो। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां, ऐसा उजाला बन जाओ। दुख उठा के खुशी बांटने वाले बन जाओ। और दूसरी अहम बात कि हम में से जिस जिसके वालदैन दुनिया में हैं, जिंदा हैं, उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। अपने वालदैन हों या शोहर के वालदैन हों, वो जन्नत हैं। और आज मैंने चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, आज मैंने चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ़ एक कागज़ पे लिखा लफ्ज़ माँ रहने दिया, सिर्फ़ एक कागज़ पे लिखा लफ्ज़ माँ रहने दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इस बात की तौफीक अता करे कि मैं और आप वालदैन का, अगर किसी के वालदैन नहीं है, खाला ज़िंदा है, किसी की फुफो ज़िंदा है, चाची ताई कोई भी बुज़ुर्ग जो हैं ज़िंदा हैं, देखना साथ ही छूटे ना बुज़ुर्गों का कहीं। पत्ते पेड़ों पे लगे हों तो हरे रहते हैं, पत्ते पेड़ों पे लगे हों तो हरे रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको हुस्ने अमल की तौफीक अता करें। हाय वो लोग थे, कैसे वो लोग थे, छोड़ दी जिंदगी बंदगी के लिए। एक तू भी तो है, एक मैं भी तो हूँ, हाय अफसोस हूँ, छोड़ दी बंदगी जो है वो जिंदगी के लिए। तो आइए, ये जो गुजरती हुई जिंदगी है, ये गुजरते हुए दिन हैं, दूसरों के लिए दुआएं करें, मोहब्बतें दें, और कुछ नहीं कर सकते, अच्छा मशवरा दे दें, उनको प्यार से देख लें। तो मैं अपनी बहन जो है फिरोज़ा है, इसकी बहुत मशकूर हूँ, आई रियली वेरी थैंकफुल टू हर कि उसने हमें यहाँ बुलाया, हम सबको इकट्ठा किया, हमें नेकी का एक मौका दिया, सिस्टरहुड को बढ़ाने का, करने का। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको दुनिया आखरत में खुशियाँ दे, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी ज़िंदगी के मराहिल इसके लिए आसान कर दे। दुआ कर लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا। ये वो दुआ है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ते वक्त मदीना की तरफ जाते हुए पढ़ी थी हिजरत के मौके पर। और आज हम ये दुआ पढ़ रहे हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त हमारी फिरोज़ा बहन का पहले घर को छोड़ना और नए घर में दाखिल होना इसको मुबारक बना दे, इस पर, इसके बच्चों पर, इसके शोहर पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल कर, इन सब को जो है वो अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रख, इनको रिज़्क हलाल जो है उसमें कशाइश दे, आसानी कर दे, सब इनको सेहत कामला अता कर सबको। और या रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में रहते हुए इनको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता कर, और इनके बच्चों को मुत्तकियों का इमाम बना, और इनके बच्चों को इनके लिए सदका जारिया बना, हर दुख हर परेशानी हर मुसीबत जो है उसको हटा दे, टाल दे। और या रब्बुल इज़्ज़त, ये तमाम दुआएं जो अभी हम अपनी बहन के लिए कर रहे थे, मेरी जितनी बहुत ही प्यारी प्यारी बहनें मौजूद हैं यहाँ पे, उन सब के हक़ में ये दुआएं कबूल कर ले, उनके लिए, उनके शौहर के लिए, उनके बच्चों के लिए, और हमारे शौहरों के लिए, हमारे शौहरों के वालदैन के लिए, और उनके बहन भाइयों के लिए। या रब्बुल इज़्ज़त, रब्बी जल्लका ज़क्कारा लका शक्कारा लका मुखबतन लका अव्वाह मुनीबा। तू हमें बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाला, बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाला, और अपनी बहुत ज़्यादा इबादत करने वाला बना। या रब्बुल इज़्ज़त, तूने दुनिया बनाई और बहुत ही खूबसूरत बनाई, और दिल है कि लपक लपक कर दुनिया की तरफ जाता है। तू हमें जो है वो दुनिया में रहते हुए अपनी मौत की, अपनी आखिरत की तैयारी करने वाला बना। और आप हमें माफ़ कर दीजिएगा हमारी उन सारी ख़ताओं को और उन गलतियों को जो हमसे भूले से हो जाती हैं, और उन तमाम को भी जो हम जानबूझ कर करते हैं। और ये हमारे पड़ोसी, ये सब यहाँ पे हमारी बहनें बैठी हैं, दोस्त भी और सब, या रब्बुल इज़्ज़त, इनके हकूक़ में हमसे बहुत कमी और कोताही हो जाती है और हो गई, अब हमें माफ़ कर दीजिएगा। या रब्बुल इज़्ज़त, तू हमें उन बेहतरीन मुसलमानों में से बना जिनका इखलाक अच्छा है, जिनका किरदार अच्छा है, जो अंदर से बाहर से मुसलमान है, जिनके अंदर कंट्राडिक्शन नहीं है, जिनके अंदर मुनाफ़क़त नहीं है। या रब्बुल इज़्ज़त, तू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट सहाबा सहाबियात के तर्ज़ अमल पर हमें चलने की तौफीक अता कर। तू हमें दुनिया में रहने वाला और आखरत में जीने वाला बना दे। तू हमारे बच्चों को मुत्तकियों का इमाम बना दे। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वज़अलना लिल्मुत्तकीना इमामा। रब्बि जअलनी मुक़ीमा अस्सलाति वमिन ज़ुर्रियती रब्बना वतक़ब्बल दुआ। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب। जितने ज़िंदगी के दिन हैं, तू हमसे ऐसे अमल करवा जो तुझे राज़ी कर दें, हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता जो हमारे हमें जन्नत में ले जाने का ज़रिया बन जाएं। या रब्बुल इज़्ज़त, तू हमें अच्छा मुसलमान बना दे। या रब्बुल इज़्ज़त, हमें समझ नहीं आती कि किस तरह से हम बहुत अच्छे और नेक बन जाएं, और जिन चीज़ों की समझ है उस पर जब अमल करने लगते हैं तो अपनी ख्वाहिशात और शैतान की चालें, साजिशें, वसवसे इस तरह से आकर हमें घेर लेते हैं कि हम वैसे नहीं बन पाते जैसा कि एक मुसलमान को होना चाहिए। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ना इबादतिक। या रब्बुल इज़्ज़त, ऐसे अमल करने की तौफीक अता कर जो तुझे राज़ी कर दे, हमें ज़ुल्बजादैन बना दे, हमें वक़र सिद्दीक़ रदी अल्लाह की सदाकत दे दे, उनका नेकियों की तरफ दौड़ना दे दे, उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु का जो गनी बनना है, सदका खैरात करना, सखावत, तो हमें वो अता कर दे। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु की बहादुरी दे दे, हज़रत खौला रदी अल्लाह अन्हा की जुर्रत दे दे, हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा का इल्म दे दे, हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह अन्हा ने जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और तकरीबन 48 साल रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद वो दीन की खिदमत करती रहीं, और बड़े बड़े सहाबा की वो एक उस्ताद थी औरत होके भी। तो तू हमें बहादुर बना, इल्म दोस्त बना, और या रब्बुल इज़्ज़त, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा की वफ़ा दे दे, जैसे उन्होंने अपने शोहर से वफ़ा की, दीन इस्लाम से वफ़ा की, अपना सारा माल, अपना घर, अपनी सारी चीज़ें दीन इस्लाम के लिए और तेरे बिलवड प्रॉफिट के लिए, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क़ुरबान कर दी। तो आज हमें वही सदाकत दे दे, वफ़ादारी दे दे। तो हमारे आजकल इधर शादियां हो रही हैं, उधर तलाक़ें हो रही हैं, उम्मत मुस्लिमा का फैमिली सिस्टम ब्रोकन हो रहा है, शेक हो रहा है। या रब्बुल इज़्ज़त, तू हमारे घरों को बचा ले, हमारे बच्चों की जवानियां जो हैं वो नाइट क्लब्स में गुजर रही हैं, बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं, आज माएँ परेशान हैं, बाप परेशान हैं। या रब्बुल इज़्ज़त, तू हमारी यूथ को बचा ले। या रब्बुल इज़्ज़त, हमारा यहाँ आने का फ़ैसला कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें हमसे कोई गलती हो गई, और अगर ये इसीलिए है कि तू इससे राज़ी है और हम यहाँ आ गए, तो अब हमें अपने तन मन धन को दीन इस्लाम के लिए वक्फ़ करने वाला बना दे, और हमारे बच्चों को मस्जिदों को आबाद करने वाला। वो बच्चे जिनका दिल मस्जिद में अटका रहता है, قلب معلق فی المسجد، اور ان کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. یا رب العزت ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لینا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کی دلی اور جائز خواہشوں کو قبول کر لینا، سب کی مشکلات کو دور کر دینا. گھروں میں کوئی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، یا کوئی مسائل ہیں، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اولاد چاہتے ہیں، بیٹے کے خواہش مند ہیں، ان کو بیٹا عطا کر دے. یا رب العزت جو قرض دار ہے ان کو قرضوں کے بوجھ سے نکال، جو حمل سے ہیں ان کو حمل سے خیریت سے فارغ کر، اور بچوں کو لائق اور ذہین کر دے. دلوں میں شوہر کے دل میں بیوی کی، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت ڈال دے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، ربنا تقبل دعا. اللہم انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.